रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के संसदीय दल के नेता के रूप में वरिष्ठ नेता बालेंद्र शाह चयनित। प्रतिनिधि सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने पद एवं गोपनीयता की ली शपथ। जेएनजी आंदोलन के दौरान जले दस्तावेजों में से भरतपुर मालपुत कार्यालय के 8000 नए अभिलेख स्थापित। और आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले के रायवरम के पास एक सड़क हादसे में 14 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के संसदीय दल के नेता के रूप में बालेंद्र शाह चयनित हुए हैं। रासोपा के केंद्रीय कार्यालय वनस्थली में आज शाम आयोजित केंद्रीय समिति तथा संसदीय दल की संयुक्त बैठक ने वरिष्ठ नेता बालेंद्र शाह को संसदीय दल का नेता चुना। यह जानकारी पार्टी प्रवक्ता मनीष झा ने दी। बैठक में पार्टी अध्यक्ष रवि लामिछाने द्वारा वरिष्ठ नेता शाह को संसदीय दल का नेता चुनने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया और आगामी सरकार गठन के लिए उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया, प्रवक्ता झा ने बताया। उस अवसर पर पार्टी अध्यक्ष लामिछाने ने संसदीय दल के नेता शाह को बधाई एवं सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने सांसदों को राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा ने संसदीय दल के नेता के रूप में बालेंद्र शाह को सर्वसम्मति से चुना है, जिससे उनके प्रधानमंत्री बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पहले ऐसी स्थिति में जब किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला था, राष्ट्रपति सरकार गठन के लिए आह्वान करते थे, लेकिन इस बार संविधान के अनुसार बिना किसी आह्वान के प्रतिनिधि सभा में बहुमत प्राप्त दल रासोपा के संसदीय दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा। सदन में रासोपा 182 सीटों के साथ लगभग दो तिहाई बहुमत के करीब है, जबकि सरकार गठन के लिए 138 सीटें ही पर्याप्त होती है। संविधान के अनुच्छेद 76 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति प्रतिनिधि सभा में बहुमत प्राप्त संसदीय दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे और उनके नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का गठन होगा। इसी प्रावधान के अनुसार रासोपा बालेंद्र शाह को संसदीय दल का नेता चुने जाने की औपचारिक जानकारी राष्ट्रपति कार्यालय को दिए जाने के बाद राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करेंगे, ऐसा राष्ट्रपति कार्यालय ने बताया। कल दोपहर 12:34 पर नवनियुक्त प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए शीतल निवास स्थित राष्ट्रपति भवन में तैयारी शुरू हो चुकी है। शपथ लेने के बाद शाह कल दोपहर 2:15 पर प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद के कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण करेंगे। इस बीच मंत्रिपरिषद में शामिल किए जाने वाले मंत्रियों के नाम तय करने के लिए रासोपा के शीर्ष नेता बैठक में जुटे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के उपसभापति डॉ स्वर्णिम वागले ने कहा है कि सरकार की अब की प्राथमिकता सुशासन और आर्थिक पुनर्संरचना होगी। आज नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यों के पद एवं गोपनीयता की शपथ समारोह के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए डॉ वागले ने कहा कि बनने वाली सरकार का मुख्य लक्ष्य गुणवत्तापूर्ण पुनर्निर्माण के साथ सुशासन स्थापित करना है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के सचिव पद्मा अर्याल ने कहा है कि वे सरकार को उसके गुण और दोष के आधार पर सहयोग करेंगी। संघीय संसद के शपथ ग्रहण के बाद सांसद अर्याल ने विपक्ष की भूमिका में रहकर सकारात्मक कार्यों में सहयोग देने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता वर्षमान पुन ने कहा है कि वे रचनात्मक विपक्ष में रहकर सरकार को जवाबदेह बनाने का काम करेंगे। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य के शपथ समारोह में पत्रकारों से प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वे जनता के जनादेश के अनुसार विपक्ष में रहकर संसदीय भूमिका निभाएंगे। श्रम संस्कृति पार्टी के अध्यक्ष हरकराज राय ने कहा कि उनकी पार्टी संसद में रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। शपथ समारोह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वे सरकार को रचनात्मक सहयोग और आलोचनात्मक समर्थन देंगे। सुनसरी क्षेत्र नंबर एक से निर्वाचित सांसद राय ने कहा कि वे पूरे देश में स्वच्छ पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने चुनाव परिणाम से निराश न होकर देश और जनता के हित में दृढ़तापूर्वक काम करने के लिए अपने सांसदों को निर्देश दिया है। प्रतिनिधि सभा के नवनिर्वाचित सांसदों द्वारा आज शपथ लेने के तुरंत बाद पार्टी के केंद्रीय कार्यालय च्यासल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा में मौजूद सांसदों को जनहित और राष्ट्र निर्माण को केन्द्र में रखकर कार्य करने को कहा। पूर्व प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि पार्टी पहले भी देश और जनता के हित में काम करती रही है और आगे भी देश की समृद्धि के लिए कार्य संरचना में सहयोग करेगी। उन्होंने पार्टी को एकजुट होकर आगे बढ़ने और सुशासन में रहकर कार्य करने पर जोर दिया। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे। ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो। हुन्छ, तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् बाबुजू।
ओए, वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
है त पनि एनटिसीको सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसीको डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। कानून, न्याय तथा संसदीय मामलों के मंत्री अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने से देश निर्माण और सकारात्मक व्यवस्था के विकास में योगदान मिलेगा। मंत्री सिन्हा के विदाई कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के प्रति जनता का विश्वास मजबूत करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों के प्रति आम जनता में जो नकारात्मक धारणा और अविश्वास है उसे समाप्त करने के लिए काम करना चाहिए। कार्यक्रम में मंत्रालय के सचिव पराश्वर ढुंगाना ने बताया कि मंत्री सिन्हा के नेतृत्व में तीनों स्तर की सरकारों के बीच कानूनी समन्वय मजबूत हुआ है और कम समय में सुशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने के खिलाफ संगठित अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में संशोधित कर वापस लेने के महान्यायाधिवक्ता कार्यालय के निर्णय के विरुद्ध दायर रिट याचिका पर आज भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले को अगली सुनवाई रविवार को हृदय हृदय जारी सुनवाई के रूप में होगी। न्यायाधीश विनोद शर्मा और अब्दुल अजीज मुसलमान की संयुक्त पीठ में चैत 10 गते से सुनवाई शुरू हुई थी, लेकिन पूरी न होने के कारण इसे चैत 15 गते रविवार तक के लिए स्थगित किया गया है। यह जानकारी अदालत के प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइराला ने दी। गत भदौ 23 और 24 को हुए जेंजी प्रदर्शन के दौरान जले दस्तावेजों में से चितवन के भरतपुर स्थित मालपोत कार्यालय में अब तक 8,000 नए अभिलेख श्रेष्ठता तैयार किए गए हैं। हालांकि सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अनुमान है कि कार्यालय में करीब 2,00,000 के आसपास अभिलेख मौजूद थे। आगजनी की घटना में सभी कागजात जलकर नष्ट हो जाने के बाद मालपोत कार्यालय ने भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र के नए अभिलेख तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इसी क्रम में भरतपुर मालपोत कार्यालय ने जिले की सभी 7 स्थानीय तहों को भूमि स्वामित्व के नए अभिलेख के लिए सिफारिश भेजने का अनुरोध किया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम जिले के रायवरम के पास एक सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई है। आज सुबह स्थानीय टाइल खदानों के पास एक निजी बस और एक ट्रक की टक्कर हो गई, जिससे दोनों वाहनों में आग लग गई। मार्कापुरम के डीएसपी हर्षवर्धन राजू ने बीबीसी तेलुगु को बताया कि बस में यात्रा कर रहे 14 लोगों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक इस हादसे में कुछ अन्य यात्री भी घायल हुए हैं। दुर्घटना में बस और ट्रक पूरी तरह जल गए। इस हादसे पर पीएम मोदी ने शोक जताया और प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की सहायता देने की घोषणा की है। इस बस हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शोक जताया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा के संसदीय दल के नेता के रूप में वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह चयनित। प्रतिनिधि सभा के नवनिर्वाचित सदस्यों ने पद एवं गोपनीयता के लिए शपथ। जेएनजी आंदोलन के दौरान जले दस्तावेजों में से भरतपुर मालपोत कार्यालय के 8,000 नए अभिलेख स्थापित। और आंध्र प्रदेश के मरकापुरम जिले के रायवरम के पास एक सड़क हादसे में 14 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।